بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله مولانا العظيم سنتے تو ہم رہتے ہیں پھر بھی تازہ کر لو اور یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی اہم بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ سات سات مرتبہ ارشاد فرمایا. سورۃ الکہف اس کی شروع کی اور آخری آیتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث مظاہر حق میں ہے کہ رات کو سوتے وقت پر جو آدمی سورۃ الکہف کی آخری آیتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے. دجال کا فتنہ آئے گا ہمارا ایمان ہے، لیکن دجالی فتنے تو دنیا میں آ ہی چکے ہیں. وہ جو بڑا دجال کا فتنہ آنے والا ہے، اس سے پہلے جو دجالی فتنے ہیں جو دنیا میں اس کے آنے کا ماحول بنائیں گے، وہ تو اس وقت پوری دنیا میں آ ہی چکے ہیں. تو جب سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، اس کی ابتدائی آخری آیتوں میں، سورہ کہف کی پوری تلاوت میں، کہ اس سے خود دجال، جو بڑا دجال آئے گا، اس کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، تو جو دجالیوں کے چھوٹے موٹے فتنے ہیں اس سے تو انشاءاللہ مضبوط حفاظت ہو جائے گی. اس لیے اس کا معمول بنا، رات کو عشاء کے بعد سوتے وقت پر، جہاں دوسری بہت ساری سنت چیزیں ہیں پڑھنے کی، اتنی ایک چیز بڑھا دو کہ سورۃ الکہف کی اخیر والی 3 یا 10 آیتیں پڑھ کے سونے کا معمول بنا لو، اور شروع کی بھی پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے. تو اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ دجال اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. بہت مختصر لفظ میں سمجھ لو دجالی فتنہ. کئی حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ دجال ایک طرف آگ رکھتا ہوگا، ایک طرف باغ رکھتا ہوگا. اچھا، جو اس کی آگ ہوگی، خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی آگ میں چلے جانا، تو اس کے اندر جنت ہوگی. और जो उसका बाग होगा उस बाग से अपने आप को दूर रखना, उसके अंदर जो है तुम्हारे लिए जहन्नम की आग होगी। इस हदीस का एक मतलब ये भी बयान किया गया कि दज्जाल और दज्जालियों के जमाने के अंदर जाहिर के अंदर जो चीजें तकलीफ और मुसीबत वाली है उसी चीज के अंदर अल्लाह ताला ने राहत रखी है। आज सबसे बड़ी मुश्किल चीज हमारे लिए शरीयत और दीन है कि दीन के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल, शरीयत पर अमल करना बहुत मुश्किल। हदीस में आता है कि ऐसे हालात कि हाथ में कोई आदमी अंगारा जलता हुआ वो पकड़ना कितना मुश्किल का, उससे ज्यादा मुश्किल होगा उस दौर में दीन के ऊपर अमल करना। तो आज यही हल है कि दीन के ऊपर अमल करने से तबीयतें घबराती है, दिल नहीं चाहता। अनुल्जिमो कुमो हाव तुम लहाकारी हो, और जिस चीज को आदमी पसंद नहीं करता कोई उसको जबरदस्ती इंसान के ऊपर चिपकाना जाए तो वो चिपकाना ज्यादा देर रहता नहीं है, निकल जाता है। तो इस वक्त का उम्मत का सबसे बड़ा फितना जो दज्जाली फितने की इब्तिदा कहो कि मुसलमानों के लिए दीन के ऊपर अमल करना और दीन पर चलना तबीयतें नहीं चाहती, दिमाग नहीं चाहते, मिजाज नहीं चाहते। और इंसान किस चीज को चाहता है जिसमें गुनाह, जाहिर में राहत, जाहिर में मौज मजे, अय्याशी, उसको इंसानों की तबीयत चाहती है। और यही दज्जाल के फितनों का खुलासा है, जाहिर की राहत, बातिन के अंदर अजाब, जाहिर में मुश्किल, बातिन में राहत का जरिया। और दज्जाल यही चमत्कार दिखलाएगा, एक तरफ आग होगी, रोटी का खजाना होगा, हदीस में आता है जबलुम मिनल खुब्ज, रोटी के पहाड़ लेकर वो चलेगा, यानी खाने पीने के खजाने लेकर वो चलेगा लोगों की तरफ, बादल उसके साथ होंगे, जो उसकी बात माने वहां बरसाएगा, उनके लिए वो खजानों के दरवाजे खोलेगा और लोगों को दिखाएगा लो ये जन्नत, जो मेरी मानेगा मेरी जन्नत में आवे, जो मेरी नहीं मानेगा वो मेरी जहन्नम में जावे। और रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा एहसान फरमाया कि उम्मत को रास्ता बतला दिया कि वो तुमको जिसको जहन्नम के वे तुम उसमें कूद पड़ना, उसमें तुम्हारे लिए राहत होगी, मौज मजे होंगे, आफियत होगी। और जिसको तुम्हारे लिए वो जन्नत और बागीचा और बाड़ी बतलावे उसमें बिल्कुल मत जाना, उसके अंदर तुम्हारे लिए मुसीबत ही मुसीबत, तकलीफ ही तकलीफ होगी। आज यही है, वज़ैयना लहुमुश शैतानु आमालहुम, गुनाह, बुराइयां, नाफरमानियां इतनी डेकोरेट है, इतनी मुजयन है, इतनी सजाई गई है कि उसमें आदमी को बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा, और उसको जो है आदमी खुश खुश होकर के करता है, लेकिन जब उसके अंदर दाखिल होता है तो नतीजा दुनिया में भी तकलीफ है और आखिरत में भी तकलीफ है। आज देख लो दुनिया में जुगार खेलने वाले जुगार में आगे बढ़ के कभी कोई कामयाब नहीं हुए, सूद की लाइन में चलने वाले सूद में आगे जाके कभी कामयाब नहीं हुए, गुंडागर्दी करने वाले कभी इसमें जाके कामयाब नहीं हुए। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, शैतान ने मुजयन किया है, डेकोरेट किया है, सजाया है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आदमी उसमें आगे चलता है तो दुनिया का नुकसान भी दिखता है और आखिरत का तो नुकसान है ही है अपनी जगह के ऊपर। लेकिन भाइयों, आदमी दीन पर जब चलता है, हराम छोड़ो, गुना छोड़ो, बुराई छोड़ो, शरीयत के खिलाफ काम छोड़ो, तो बहुत दुश्वारी लगती है, बहुत तकलीफ लगती है, बहुत मुश्किल लगता है जाहिर में। लेकिन उसी मुश्किल में खुशी खुशी अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आगे चलेगा तो अल्लाह सुबहानहु व ताला आखिर में दुनिया में भी राहत देंगे और इंशाल्लाह आखिरत की भी राहत है। इसीलिए एक हदीस पाक का मजमून मैं आपको सुनाता हूं, पहले आयत समझ लो क्या फरमाया। قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, सबसे बड़ा लॉस में जाने वाला कौन। आज यही डिस्कस होती है ना, मार्केट में बैठते हैं, बाजार में बैठते हैं, चौरों पर बैठते हैं, नेट पर चैट करते हैं, ये डिस्कस के सबसे बड़ा लॉस में जाने वाला कौन। तो आदमी दुनिया के लॉस को लॉस समझता है। कुरान में क्या फरमाया, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, सबसे बड़ा अमल के एतबार से लॉस में, नुकसान में जाने वाला कौन। الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, जिसकी कोशिश, मेहनत, फिकर, प्लानिंग बस महज 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 ये फानी दुनिया के पीछे लगती रेवे, नमाज भी छोड़ रहा है कारोबार के लिए, फर्ज वाजिब को छोड़ रहा है दुनिया दुनिया के वास्ते, हलाल रोजी कमाओ लेकिन शरीयत को बर्बाद करके नहीं, शरीयत को पामाल करके नहीं, फर्ज वाजिब को छोड़ करके नहीं। हलाल रोजी तो बहुत अच्छी चीज है लेकिन शरीयत पर अमल के साथ, इबादतों की पाबंदी के साथ, फराइज वाजिब सुन्नत के एहतमाम के साथ। तो इरशाद फरमाया कि जिनकी हर वक्त की कोशिश, फिक्र, सोच सिर्फ और सिर्फ दुनिया 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 है, फानी दुनिया, और ऊपर से वो क्या समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, आज दुनिया में अजीब माहौल है। एक आदमी दूसरे को धोखा देकर, दो नंबरी करके, जुल्म करके, ज्यादती करके, हक दबा करके बहुत कुछ कमा लेगा तो क्या मास्टर आदमी है, मास्टर माइंड आदमी है, बहुत होशियार है, क्या उसकी चालाकी है। कि कोई भी गुचवाए ले, मसले लेके जाओ वो रास्ता निकाल ही देता है। आज ये माहौल है दुनिया का कि जहां दो नंबर ही है, जहां शरीयत के खिलाफ है, जहां धोखेबाजी है, जहां बनावट है, जहां जुल्म है, जहां हक तलबी है, किसी तरह भी मेरा उल्लू सीधा हो जाए चाहे अल्लाह नाराज हो जाए, वो आदमी दुनिया में सबसे बड़ा होशियार, सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा अकलमंद और सबसे बड़ा जो है कामयाब। ये है फरमाया, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, उलाइकल्लदीन कफरू बिआयाति रब्बिहिम वलिकाई, ये अल्लाह का और अल्लाह की मुलाकात का इनकार करते हैं। देखो मुसलमान जबान से तो कहता है कयामत आने वाली है लेकिन अमल में कहीं दिखती है कि कयामत आने वाली, ऐसा लगे हमको प्रैक्टिकली जिंदगी में, मामलात में, व्यवहार में, जिंदगी में कहीं ऐसा लगता है कि हमको डर हो कि कयामत आने वाली है, मौत आने वाली है। बोलते हैं हमारा ईमान है, यकीन है, मौत है, कयामत है, अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन प्रैक्टिकली जिंदगी में नजर नहीं आता। मैं आजकल एक मिसाल इसकी देना मुनासिब समझा करता हूं कि लोग क्या करेंगे, पुलिस के डर से मास्क पहनेंगे, ये नहीं इनको यकीन है कि भाई वो पकड़ेंगे तो दंड करेंगे, ये नहीं कि उसकी वजह से बीमारी नहीं होवे इसलिए एहतियात में मास्क पहनेंगे, नहीं। अब सुन रहे हैं कि इसका कोविड में इंतकाल हुआ, इसका कोरोना में इंतकाल हुआ, इसको कोविड हो गया, उसको कोरोना हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जिंदगी में कहीं डर जैसा महसूस हो रहा है बतलाओ। बस ये हाल इस वक्त हमारे सामने कयामत का है। कयामत ईमान है, यकीन है बोलते, लेकिन अमली जिंदगी में कयामत, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर, अल्लाह को हिसाब देने का डर अमली जिंदगी में हमारे सामने नहीं है। मौका आएगा हराम भी कर डालेंगे, मौका आएगा झूठ भी बोल देंगे, मौका आएगा नाजायज भी कर डालेंगे, किसी तरह भी मेरी दुनिया बने। वहुम यहसबून अन्नहुम युसिनून सुनआ اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا। एक हदीस का मजमून सुन लो, हमेशा जहन के अंदर रखना। इमाम इब्ने माजा ने अपनी सही में इसको नकल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शकी आदमी जहन्नम में जाएगा। शकी कहते हैं बद नसीब को, बुरे नसीब वाला, बदबख आदमी। फिर सहाबा ने पूछा कि हुजूर बदबख किसको कहते हैं, शकी किसको कहते हैं? अब हुजूर ने जो शकी की व्याख्या की, तारीफ की, वो समझो शकी किसको कहते हैं। और फिर हम सब अपनी जिंदगी देखें कि अल्लाह ना करे कहीं ये बात हमारे अंदर तो नहीं है, है तो सुधरने की जरूरत है। फरमाया कि शकी वो आदमी है जो अल्लाह ताला के लिए इबादत नहीं करता और अल्लाह ताला के लिए गुनाह से नहीं बचता। अल्लाह के लिए इबादत नहीं करता और अल्लाह ताला के लिए गुनाह से नहीं बचता। का गुनाह कर से बचेगा तो क्यों बचेगा? समाज में लोग क्या कहेंगे ये करूंगा तो, मोहल्ले में लोग क्या बात करेंगे, सरकार की नजर है, मैं रडार में हूं, मैं वॉच में हूं, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे ये करेगा वो करेगा। यानी दुनिया के डर से आदमी गुनाह से बचता है, अल्लाह के डर से आदमी गुनाह से नहीं बचता। ये शकी आदमी है और इबादत करेगा अल्लाह के लिए नहीं, किसी और के लिए, कोई भी मकसद। और एक हदीसे पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रो, अल्लाह के सामने रो, इस वक्त जरूरत इसकी है, रो, आंसू बहाओ। फिर चूंकि रोना आदमी के इख्तियार में नहीं, बहुत से लोगों को, बिचारों को रोना नहीं आता, मुख्तलिफ वजूहात है, तो आगे आका ने इरशाद फरमाया, रोने वालों जैसा अल्लाह के सामने सही सच्चा ढोंग करो। रोना नहीं आता तो अल्लाह के सामने सही सच्चा रोने वालों जैसा हुलिया बनाओ, शक्ल सूरत बनाओ अल्लाह के सामने। आगे इरशाद फरमाया, अगर दुनिया में नहीं रोए तो जहन्नमी लोग इतने रोएंगे, इतने रोएंगे कि उनके गालों के ऊपर छोटी छोटी नालियां और नहर बन जाएगी रोने की वजह से। यहां नहरें बन जाएगी ये गाल पर, चेहरे के ऊपर। आगे हदीस में इरशाद फरमाया कि एक वक्त वो आएगा कि इनके आंसू खत्म हो जाएंगे, इतना रोएंगे वहां पर, फिर खून निकलेगा आंख में से और आंखें खून वाली हो जाएगी, जख्म वाली हो जाएगी। और आगे हदीस में अजीब बात इरशाद फरमाई कि उन जहन्नमियों के रोने की वजह से ऐसा पानी बहेगा आंसुओं का कि अगर उसमें कोई कश्ती चलाना चाहे, घोड़ी चलाना चाहे, बोट चलाना चाहे तो वो चला सकेगा, वहां ये रोना होगा अगर दुनिया में नहीं रोए तो। इसीलिए ये काम करो, इस वक्त रो अल्लाह के सामने, खूब रो। रोना नहीं आता तो सही माने में रोने की ट्राई करो, मुंह बनाकर, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे, मौला जिस चीज से तू नाराज होता है उससे बचने वाला बना दे, और जो आपके खुशी के काम है वो करने वाला बना दे। بس یہ آنسو انقلاب لائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی مسجد کا
ہمارے یہاں جو مسجد کا کام چل رہا ہے ابھی گیٹ کا کام چل رہا ہے اس میں بہت بڑی رقم قرض لے کر کے کام شروع کیا گیا ہے اور بھی بہت سارا کام